ओम शांति। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में उनका ही मौसेरा भाई आयुष्मान नंद एक वैराग्य अवस्था को पाता है। वो गृहस्थी है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, परंतु वैराग का वेग बहुत तीव्र है। जब हृदय में वैराग आता है तो संसार व्यर्थ लगने लगता है। यहाँ के सारे प्रपंच, यहाँ का सारा विस्तार, यहाँ के सारे संबंध, सब कुछ निरर्थक, निरुद्देश। ऐसा तीव्र वैराग आयुष्मान नंद के जीवन में आता है। वो संन्यास लेना चाहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब इस संसार में नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। पत्नी कहती है, भले जाओ, मैं तुम्हारे मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगी, परंतु कभी कभी इस कर्म पतिता को याद कर लिया करो, कभी कभी इस कर्म पतिता को याद कर लिया करो। ये शब्द वो सुनता है और चला जाता है, संन्यस्त होता है, दीक्षित होता है, प्रवक्या के मार्ग पर है, साधना करता है, परंतु अचानक उसके वो शब्द, उसके पत्नी के शब्द कानों में गूंजते हैं, कभी कभी मुझ कर्म पतिता को याद कर लिया करो। और बस उन शब्दों में जैसे जादू है, सारी स्मृतियां गृहस्थ की, भोग की, एक संकल्प खींच कर लाता है। जब भी साधना में बैठता है, ध्यान में बैठता है, मन विचलित होता है, पत्नी के शब्द याद आते हैं, कभी कभी मुझ कर्म पतिता को याद कर लिया करो। बहुत प्रयत्न करता है, अध्यात्म में जितने मार्ग होंगे अतीत को भस्म करने के, अतीत को भूलने के, अतीत का प्रभाव स्वयं पर जो है वो कम करने के, वो सब कुछ करता है, हर विधि हर विधा अपनाता है, ताकि ये संकल्प ना आए। कर्म सेवा करता है, सब करता है, परंतु वो शब्द गूंजते रहते हैं बार 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 बार। आखिरकार वो निराश हो जाता है, हार जाता है। उसे लगता है मैं स्वयं को धोखा दे रहा हूं। मार्ग है संन्यास का और लौकिक संबंधियों को याद किया जा रहा है। मार्ग है आगे बढ़ने का और अंदर ये कैसा अंधकार, ये कैसा धोखा। आए किस लिए थे और कर क्या रहे। अपने गुरु मित्र से वो कहता है, गुरु भाई से, कि मैं सोच रहा हूं वापस चला जाऊं, ये मुझसे नहीं होता, ये धोखे का जीवन, अंदर एक बाहर एक। ध्यान करने बैठता हूं तो पत्नी के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, इतना तीव्र आकर्षण जो कि और बढ़ गया है। वो शिष्य महात्मा बुद्ध को ये बात बताते हैं और साक्य मुनि महात्मा बुद्ध उसे बुलाते हैं और पूछते हैं, बोलो क्या विचार है। वो कहता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं सन्यास के साथ धोखा कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे जाना ही होगा। महात्मा बुद्ध उसे समझाते हैं, परंतु समझने से परे अवस्था में पहुंच गया है। और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है तुम जाना है तो जाओ, पहले मेरे साथ चलो। और उसे ले जाते हैं किसी वन में, उसे बिठाते हैं और अपने योग के बल द्वारा उसे एक दृश्य दिखाते हैं, स्वर्ग का, ऊंचे लोकों का, जहां पर बहुत सारी अप्सराएं हैं। और उसे पूछते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी इन अप्सराओं से भी अच्छी है? वो कहता है, ये अप्सराएं, इनके सामने तो मेरी पत्नी कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम इनको पाना चाहोगे? वो कहता है, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध कहते हैं, उसके लिए तुम्हें 1 साल मेरे पास रहना होगा, और 1 साल के बाद मैं तुम्हें इस लोक में भेज दूंगा, परंतु 1 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। वो कहता है, स्वीकार है। फिर से एक उत्साह, एक उमंग आ जाता है, धीरे धीरे पत्नी को भूल जाता है और साधना में लग जाता है। 1 वर्ष पूरा होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, प्रतिज्ञा अनुसार मैं तुम्हें वहां भेजने के लिए तैयार हूं। वो रोने लगता है, कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि 1 वर्ष में मैंने जो पाया है जीवन में आज तक नहीं पाया, ऐसा सुख, ऐसा इंद्रियों से परे का सुख। जो देह का जगत था, उस देह के जगत से पार का सुख जो मैंने अनुभव किया, वो और संसार में कहीं पर नहीं है। ये संसार असार और शरीर मिट्टी, यही वैराग की परिभाषा है। वैराग अर्थात संसार असार और देह मिट्टी। शरीर न स्वयं के शरीर से, ना ही किसी और के शरीर से, वो आकर्षण समाप्त हो गया है। और योगी आत्मा के जगत में विचरण कर रहा है निरंतर, ब्रह्मचर्य अग्नि है, ब्रह्मचर्य वो शक्ति है। यदि इसका अखंड पालन किया जाए तो एक इमारत खड़ी होगी पवित्रता की। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, गीत है ना? ब्रह्मचर्य तुम्हारी धमनियों में रक्त की तरह बहे, भारत का जो पतन हुआ वो किस लिए हुआ और क्यों हुआ? देवताओं का पतन हुआ वो क्यों हुआ? ये वाम मार्ग क्या है? इसी एक विकार ने सबको गिराया है। अगर इस पर जीत पालो तो बाकी सभी विकार अपने आप पराभूत हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य तपस्या है, ब्रह्मचर्य साधना है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी धारणा है। और इस यज्ञ का फाउंडेशन भी ब्रह्मचर्य ही है। यात्रा ब्रह्मचर्य से चालू होती है। पवित्रता से गुजरती है, ब्रह्माचर्य पर आती है और पावनता में समाप्त होती है। परंतु केंद्र है ब्रह्मचर्य। तो आप सभी इस भट्टी में आए हैं। भट्टी का लक्ष्य है जागृति। जो खो गए थे, भूल गए थे, फिर से स्वयं को जगाना। और इस भट्टी के तीन नियम हो तो ये भट्टी सफल होगी। यहां पर मौज के लिए नहीं आए हैं, पिकनिक के लिए नहीं आए, तपने के लिए आए हैं, खाने पीने के लिए नहीं आए, केवल सौगात लेने नहीं आए, केवल भाषण सुनने नहीं आए, केवल कुछ वो करने आए हैं जो हुआ नहीं, नियति ने अवसर दिया है। रूल नंबर वन, अगर ये नियम केवल इस भट्टी के लिए नहीं है, वास्तविक भट्टी तो यहां से जब घर पहुंचोगे तब चालू होगी, ये केवल उसकी तैयारी है। वास्तविक भट्टी तो वहां होती है जहां कर्म क्षेत्र है, जहां समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, मुसीबतें हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। यहां सब कुछ प्रतिकूल है, ये केवल एक प्रिपरेशन, एक तैयारी मात्र है उस भट्टी के लिए जो यहां से जाने के बाद चालू होगी। इसलिए यहां पर कुछ त्याग करना होगा। रूल नंबर वन, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, या फिर मोबाइल का स्पर्श ही ना हो शरीर को, हो सके तो बंद कर दो। जो प्रबंधन में है, जिनको सबको संभालना है, उनको छोड़कर बाकी और किसी को कोई काम नहीं है। स्विच्ड ऑफ, नो टच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। रूल नंबर टू, आर्यमौन। आपस में बात करते करते तपस्या नहीं होती है। भट्टी अर्थात ऑपरेशन है, सर्जिकल स्ट्राइक, यहां चीरा लगाना है आत्मा पर। पता नहीं क्या क्या दबा बैठा है, कितनी वासनाएं, कितनी इच्छाएं, कितनी आकांक्षाएं, कितनी अतृप्त भावनाएं, कितनी घृणा, कितनी नफरत, कितना काम, कितना क्रोध, कितना आवेश, कितना दर्द, कितनी पीड़ा अंदर छिपा है। और वो छिपा ही रहता है, अमृत वेला, मुरली, दिनचर्या, सेवा, कुछ भी उसको स्पर्श नहीं करता, वो वैसे के वैसा ही रहता है, क्योंकि वो बहुत गहरा है, सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारी सारी दिनचर्या और सारी साधनाएं ऊपर ऊपर के विकारों को हटा रही है, नीचे तो हम पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ बाह्य मुक्ता है। सुबह से लेकर रात तक योग में भी बाह्य मुक्ता ही है, सब कुछ बाह्य मुक्ता है। साधना तो बहुत गहरी होती है, और जब तक वो नहीं होगी, केवल ऊपर ऊपर की खुशी होगी। यहां से जाएंगे, सबको सुनाएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, यहां का प्रभाव एक 10 दिन 15 दिन चलेगा, बाकी जस के तस। अगर इसको गहरा अनुभव बनाना है तो चुप, बात करना बंद, कोई करे तो करने दो, चुप। जितना गहरा मौन उतनी गहरी साधना। हमारे जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, वो योग की अवस्था में प्रकट होगा। और टाइम है 2 से 5 के बीच का, रात का जो सन्नाटा होता है, श्श की आवाज जहां चलती है, उस एकांत में, उस मौन में वो हमसे बात करता है। आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस। तीसरा नियम, जितना हो सके इस कैंपस के बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन, इधर ही। लोग भट्टी करने आते हैं, हम देखते हैं भट्टी चालू है, लोग घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, किस लिए आए थे, इतना समय निकाल के आए, खर्च किया, इस सुंदर वायुमंडल में आए, यहां से कुछ लेकर जाना है, कुछ ऐसा जो जीवन को बदलने वाला हो। इस कैंपस के बाहर पैर नहीं रखना, इधर ही, इससे मिलूं, उससे मिलूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, सब बाद में। जिस दिन भट्टी खत्म होगी उसी दिन मोबाइल ऑन करना। विद दीज 3 रूल्स, रियल भट्टी चालू होगी ये भट्टी पूरी होने के बाद, ये सार्वजनिक है, वो व्यक्तिगत होगी। इसलिए अभी से प्लानिंग करनी है, यहां बैठकर वहां क्या करनी है उसकी प्लानिंग करनी है। अमृत वेले का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, सेंटर का क्या करना है, टीचर का क्या करना है, सेंटर्स मुरली का क्या करना है, सीखने का क्या करना है, सिखाने का क्या करना है, करियर का क्या करना है, संबंधों का क्या करना है, घर का क्या करना है, ऑफिस का क्या करना है, परिवार का क्या करना है, संपूर्ण प्लानिंग 6 मास की यहां से करके जाएंगे। और रियल भट्टी चालू होगी तब जब वहां पहुंचेंगे। कब पहुंच रहे वापस, डेट 4 तारीख, तो भट्टी चालू होगी 5 तारीख से, 21 दिन की भट्टी। रियल भट्टी कब से है आप सबकी, 5th से, 21 डेज, उसकी प्लानिंग अगले 2-3 दिनों में करनी है। जब तक यहां है, केवल ये भट्टी नहीं, बाबा मिलन में भी जाएंगे, समझो ये भट्टी ही चालू है कंटिन्यूअस। और सबसे शक्तिशाली भट्टी होती है स्व भट्टी, स्व शिविर। हम खुद ही जिसमें वक्ता है, खुद ही श्रोता है, खुद ही योग करा रहे हैं, खुद ही को योग करा रहे हैं, वो सबसे शक्तिशाली भट्टी होगी। तो जब वहां पहुंचेंगे 5 तारीख से 21 दिनों के लिए भट्टी करेंगे। किस विषय पर करेंगे, हरेक को वो विषय अमृत वेला ऊपर से दिया जाएगा। जिस जिस में कमी है उस पर भट्टी करनी है। अमृत वेला ठीक से नहीं होता है वो 21 दिन अमृत वेला। ब्रह्मचर्य खंडित होता है 21 दिन ब्रह्मचर्य पर। भोजन में गड़बड़ है 21 दिन भोजन की भट्टी। संबंधों में गड़बड़ है 21 दिन संबंधों में काम करेंगे, पर उसकी पूर्व तैयारी अभी इन दिनों में जब आप सब मधुबन में हैं। और आज के इस सत्र का विषय है ऊर्जा का अवलंब। सारा खेल ऊर्जा का है। शरीर सबके समान है, वही 5 तत्व, पर फिर भी किसी में बहुत ऊर्जा होती है कि कोई थकता है, किसी में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, किसी में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। ऊर्जा का संरक्षण अर्थात ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का किसी एक विकार से संबंध नहीं है. कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य, क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा को हायर ऊंचे काम में लगानी है, हायर कॉन्शियसनेस के लिए. इसके लिए ये मूर्खता होगी कि हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करें छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे कामों में. तो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य. तो इसी ब्रह्मचर्य को प्रगाढ़ दृढ़ करने के लिए आज के इस सत्र में हम 8 बातों की चर्चा करेंगे. क्या किया जाए जो ब्रह्मचर्य अखंड रहे, क्या किया जाए जो मनसा में भी ब्रह्मचर्य खंडन का खंडन ना हो. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए ब्रह्मचारी टू द कोर, और जो ये कहे कि हमारा ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं, 100 सच कॉमा एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड. मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए जो नैष्टिक संपूर्ण अखंड ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, और जो ये कह सके कि ईश्वर के अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई नहीं, ना ही हमें कोई चाहिए. वुमन आई डोंट नीड यू, मैन आई डोंट नीड यू, किसी पार्टनर की मुझे जरूरत नहीं है, अकेले का मार्ग है, अकेले चल सके, किसी की आवश्यकता नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आधार नहीं. आई रिजेक्ट ऑल सपोर्ट्स. सबसे पहला सूत्र, 8 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र ऑटो सजेशंस अर्थात आत्म सुझाव. स्वयं को स्वयं ही बताते रहना, तुम कौन हो, तुम शक्ति हो, बाल ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारिणी हो, अनटच्ड. सबने कहानी सुनी होगी, जगदीश भाई सुनाया करते थे, किताबों में भी लिखी है. एक कन्या खड़ी है, कुआ है, एक युवक आता है, कहता है प्यास लगी है पानी. वो कहती है पानी तो पिलाऊंगी पर एक शर्त है, अंग से अंग न लगे. वो कहता है हाँ. वो पानी पीता है, वो पानी मटके से उसे पिलाती है, दूर से वो चला जाता है. कुछ समय के बाद दोनों के माँ बाप दोनों की शादी कर देते हैं, पर उन दोनों को पता नहीं कि मेरा युगल कौन है. शादी होती है, रात दोनों आमने सामने, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और वो कन्या कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे, अनटच्ड प्यूरिटी. तो सबसे पहला है ऑटो सजेशंस, खुद खुद से बात करते रहना, खुद खुद को रिमाइंड करते रहना, खुद खुद ही को सुमान देते रहना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं. अपवित्रता मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकती, मुझे बहुत प्रेम है पवित्रता से, मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगती है. एंजॉय प्यूरिटी, ऐसे संकल्प लिखने हैं. आई एम सेटिस्फाइड विथ प्यूरिटी, मैं संपूर्ण संतुष्ट हूं इस पवित्रता से. पवित्रता में ही संतुष्टता है, पवित्रता में ही सुख है, पवित्रता में ही शांति है. पवित्रता वो माँ है जिसकी गोद में सुख और शांति नाम के बच्चे खेलते हैं. अगर जीवन में अशांति है और जीवन में दुख है, जरूर कहीं ना कहीं क्या है, इम्प्यूरिटी. इसलिए गहराई से स्वयं की चेकिंग करनी है, और वो सारे बंधनों को हटा देना है जिस वजह से अपवित्रता आ रही है, वो सारे ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो कि जिससे ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वो लिखो। वो टीवी हो सकता है, वो सीरियल हो सकते हैं, वो न्यूज़ हो सकती है, वो चित्र हो सकता है, पोस्टर, पिक्चर, कुछ भी। संन्यास में कहा जाता है सन्यासी को या सन्यासिनी को, अगर किसी पर पुरुष पर स्त्री पर नजर जाती है तो नजर को वैसे ही हटा लो जैसे सूरज को देखते समय चकाचौंध से तेज सूर्य की किरणें आंखों पर पड़ दी और नजर हटा देते। पहली बार किसी को देख लेना यह स्वाभाविक है, दूसरी बार पलट कर देखना ये इच्छा है, और तीसरी बार पलट कर देखना वासना। और क्या देखना है और है क्या इस शरीर में, वो सारे प्रयत्न करने हैं जिससे वैराग दृढ़ हो। जो जो आसक्त हो जाता है आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। किसी में भी आसक्ति, किसी में भी, वो व्यक्ति, वस्तु, जानवर, कुछ भी हो, हम रुक जाते हैं। इसलिए ये मार्ग में पग पग पर फूक फूक के चलना है, कहीं आसक्ति ना हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आंख कहीं ना डूबे। लोगों की आंखें डूबती है चित्रों में, गार्डन में, पर्दों में, हॉल में। ऐसा हॉल हमारे पास भी चाहिए। फर्स्ट आत्म सुझाव, ऑटो सजेशंस, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, खुद को पूछते रहना, पूछते रहना, पूछते रहना, तो जागृति रहेगी। अगर बाबा को पता चल जाए तो वो क्या कहेगा। और बाबा कहता है मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, मुझसे कुछ भी तुम्हारा छिपा हुआ नहीं है, तुम्हारा हर संकल्प मैं जानता हूं। सोचो हमने इस जीवन में जो कुछ किया है वो सारे दृश्य यदि स्क्रीन पर दिखाए जाए डायमंड हॉल के दोनों तरफ और सारा ब्राह्मण परिवार बैठा है तो कैसी रहेगी। थोड़ा सा दंड का भय है, यह आचार संहिता है ईश्वरीय और दंड बहुत कड़े होंगे। 15 नवंबर 2003 अव्यक्तवाणी, सफेद कागज पर काला दाग। ये समझना नहीं, ये तो होता है, ये तो चलता है, किसको क्या पता चलता है। खून के आंसू बहाने पड़ेंगे एक क्षणिक सुख के लिए, इतनी बड़ी प्राप्ति को गवा देना, एक क्षणिक आवेग के लिए इतने बड़े भाग्य को ठोकर लगा देना मूर्खता है। इसलिए रोज अमृत वेला दो काम करने हैं, एक बाबा से प्रतिज्ञा और स्वयं से प्रतिज्ञा, अखंड ब्रह्मचर्य की, संपूर्ण पवित्रता की। इस शरीर को कोई हाथ न लगा सके, अनटच्ड, ये पहला काम। स्वयं को स्वयं ही उठाना, समान देना, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस लिए हूं। बाकी सभी चीजों में पास, पर प्यूरिटी में फेल तो फेल। सेवाएं बहुत की, सब कुछ किया, इतनी सेवा, दिन रात सेवा, परंतु प्यूरिटी में फेल तो फेल। और जो प्यूरिटी में फेल हो जाते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। जयपुर में मंदिर था, मंदिर में बहुत सारे पुजारी थे, ब्रह्मचारी थे। गोविंद जी का मंदिर, राजा ने संदेश भिजवाया पुजारियों को, आओ मुझसे आके मिलो, मुझे काम है। पुजारियों ने कहा हम नहीं मिलेंगे, तुमको आना है तो तुम आओ। पावरफुल है सभी के सभी, तपस्वी है, हमें नहीं जाना किसी के पास, नहीं चाहिए कुछ। राजा मीटिंग बुलाता है अपने मंत्रियों के साथ, ये क्या हो रहा है। मंत्री सजेस्ट करते हैं इन पुजारियों की शादी करवा देते, भव्य शादी राज परिवार की तरफ से, अच्छी कन्याओं के साथ सबकी शादी करवा देते। अब राजा को किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही आते हैं, महाराज आपके लिए भोग, आपके लिए प्रसाद, क्योंकि अभी उनके पास गृहस्थ है, बंधन में है। पहले निर्बंधन थे, डर नहीं था किसी का, कुछ नहीं चाहिए किसी के, किसी से, अब फंस गए। और ये अवस्था केवल विवाहित होना या अविवाहित रहने से नहीं है, कोई विवाहित रहकर भी निर्बंधन रह सकता है, और कोई अविवाहित है परंतु फिर भी ब्रह्मचारी नहीं है। ये तो साधना है, मन की स्थिति के ऊपर है, कितना चेतना अनासक्त है, सब कुछ कर रही है पर डिटैच्ड, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो रोज आत्म सुझाव स्वयं को देते रहना है, ऑटो सजेशंस। दूसरा सूत्र है बिजी रहना। ब्रह्मचर्य के लिए सबसे आवश्यक है दिनचर्या को ऐसा मोड़ लो कि एक मिनट भी इधर उधर नहीं है, इतना बिजी कर दो। किसमें? GYDS, ज्ञान योग धारणा सेवा, चार सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट में दिन रात स्वयं को बिजी कर दो कि व्यर्थ के लिए समय ही नहीं है। ज्ञान है, चिंतन करो, एकांत में जाओ, मौन में जाओ, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो। योग, उसको बढ़ाओ, बैठ के हुआ योग, बैठा हुआ योग, जब तक बैठ कर योग का अभ्यास नहीं है, चलते फिरते नहीं होता है योग। इसलिए सुबह के जो 3 घंटे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, 2 बजे से 5 बजे तक के ये 3 घंटे अगले 21 घंटों का आधार स्तंभ है, नींव है। इसलिए ये 3 घंटे शक्तिशाली होने चाहिए, परंतु एक दिन में यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, टाइम लगेगा। अगर अभी 3:30 बजे उठते हैं, 5-5 मिनट पीछे जाओ। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है तो पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। रात्रि के वो सारे कर्मकांड बंद करने पड़ेंगे, व्यर्थ के सारी बातें, जल्दी सोना पड़ेगा, भोजन जल्दी लेना पड़ेगा, या रात्रि भोजन त्याग छोड़ दो तो बहुत ही अच्छा। धारणा, धारणाओं में बिजी, सेवा में बिजी, दिन रात सेवा। हमारे द्वारा सबको सुख मिले सुख दे, सुबह था ना स्लोगन। बिजी कर दो। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा, क्या काम विकार आपको तंग नहीं करता, आप ब्रह्मचारी हो, अकेले रहते हो? उन्होंने कहा, क्या करता है ना, क्यों नहीं, रोज आता है, द्वार खटखटाता है, आओ। मैं कहता हूं थोड़ी देर के बाद, नाउ आई एम बिजी, बिजी हूं, काम करने हैं, विश्व कल्याण के काम करने, ग्रंथ लिखने हैं, क्या कुछ करना है। जब मन खाली होता है तब ही विकारों का आकर्षण होता है। खाली समय, खाली रहना, फुर्सत ही सभी विकारों की जड़ है, लेजर। खाली बैठा मन क्या करता है? मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, ऑनलाइन और पतन, दोस्ती, आध्यात्मिक जीवन में पुरुष से या स्त्री से दोस्ती अर्थात संन्यास का पतन। सन्यासी का कोई दोस्त नहीं होता है, सारा विश्व ही उसका दोस्त है। ब्रह्मचारिणी का कोई दोस्त नहीं होता है, सारा विश्व उसका दोस्त है। जिसने शिव को अर्धांग बना लिया है, ऐसी अर्धांगिनियों को और किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। ऑल अनवांटेड एसोसिएशंस, कट कर दो। वैराग की कैची से कट ऑफ, अनवांटेड कम्युनिकेशंस कट ऑफ, वार्तालाप, इससे बात करूं, उससे बात करूं, क्या बात करनी है और क्या बात करनी है, कोई बिजनेस कोई काम नहीं है। युधिष्ठिर से पूछा गया, बताओ तुम्हारे मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं जब माता कुंती बैठी है, क्या तुम काम विकार से मुक्त है? वो कहता है आई एम नॉट श्योर, माँ है फिर भी, और युधिष्ठिर है, नकुल सहदेव अर्जुन भीम नहीं, भीष्म पितामह का वाक्य है, अगर मैं इन कन्याओं के साथ सहवास करूं तो मुझे भरोसा नहीं है कि ब्रह्मचारी रह पाऊंगा या नहीं। बहुत बड़ी साधना है, पल पल प्रतिपक् सजग प्रतिपक् तटस्थ की साधना है, अवेयरनेस की साधना है। मन को स्वभाव है शरीर को स्पर्श करने का, छूने का, देखने का, भोगने का। इस गहरे संस्कार जो डीप सबकॉन्शियस माइंड में, उसको वहां से निकाल कर उखाड़ कर फेंकना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। क्यों 40-40 साल चलने वाले गिर पड़ते हैं एक दिन? इस यज्ञ से यदि कोई भी कभी भी बाहर गया होगा तो बाहर से कितने भी कारण होंगे, अंदर से हमेशा ही एक ही कारण है, कहीं ना कहीं वासना। इसलिए शत्रु को कमजोर नहीं समझना, शत्रु बहुत शक्तिशाली है। उसके हर रूप को समझना है, हर रूप को, कैसे वो आता है, किस रीति से आता है। तो बिजी कर देना स्वयं को, दिनचर्या को ऐसा बिजी कर दो सुबह से लेकर रात तक, यहां बैठकर वहां की दिनचर्या देखो, ऑफिस में क्या है, जाते हैं ट्रैवल में क्या है, संडे क्या करते हो, मंडे क्या करते हो, परिस्थितियां आती है तब क्या करते हो, प्रोग्राम जब रहता हो तब क्या करते हो, शिवरात्रि रहती है तब क्या करते हो, न्यू ईयर रहता है तब क्या करते हो। संपूर्ण दिनचर्या को अमृत वेले बहुत काम करने, केवल योग लगाना ही अमृत वेले का लक्ष्य नहीं है, योग करना कराना, ज्ञान सुनना सुनाना, लास्ट संडे की मुरली, स्वरूप। योग का तो संबंध ही किसी ट्रांसलाइट से नहीं है, ना ही किसी बल्ब से है, ना किसी गीत से, ना किसी सौ रेड लाइट से, ना किसी संदली से, ना योग करने से, ना कराने से। योग तो राजयोग के कमरे के बाहर ही चालू होता है। With open eyes, every moment is Rajyoga meditation. Busy कर दो, इतना busy कि कहीं waste की कोई margin ही नहीं। तीसरा है संयम, control। ब्रह्मचर्य की का तीसरा सूत्र है control, और control में 8 बातें हैं जो कि किताबों में लिखी गई है, शास्त्रों में लिखी गई है, और अब मुरलियों में, साकार अव्यक्तों में, अलग अलग शब्दों में आई है। सबसे पहला दर्शन, देखना, अवलोकन करना, अंग प्रत्यंगों का दर्शन करना, इंद्रियों का दर्शन करना, मनोहर मनोरम इंद्रियों को देखना एक दूसरे के। ये देखने से ही माया चालू होती है, और भगवान के महावाक्य है, यदि कोई इस चमड़ी को स्पर्श करता है, हाथों से नहीं नजर से, ये है महा महा महापाप। अव्यक्त वाणी 72। हाथों से नहीं नजर से स्पर्श करता है, तो सबसे पहले आंखों को ट्रेनिंग देनी है, इसके ऊपर ही देखे नीचे नहीं, केवल यहां देखे बस। और देखना भी है तो वो देखो जो है, जो वास्तविक है, क्या है इस शरीर में। बीच बीच में हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, देखो पेशेंट्स को, ये है, वेयर इज द ब्यूटी। ये टीबी का पेशेंट, ये कैंसर का पेशेंट, ये डायलिसिस के पेशेंट, लेप्रेसी के पेशेंट, कहाँ है सौंदर्य। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कुछ समय पहले एक यंग फीमेल 20 ईयर्स, 80% बर्न हो गया था, उसके रिश्तेदार छोड़ के गए और चले गए, कभी आए नहीं, झूठे नंबर दे के चले गए। हॉस्पिटल में ही थी 6-7 महीने, वहीं शरीर छोड़ा उसने, कोई नहीं था, छोड़ के निकल गए, सब नंबर स्विच्ड ऑफ। जो प्यार था वो कैसा प्यार था, किस से प्यार था, शरीर से प्यार था। डिवोर्स, कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, रिलेशन खत्म, प्यार किससे है, शरीर से। कितने उथले और कितने झूठे संबंध है सारे। पहला देखना, दूसरा स्पर्श करना। स्पर्श करते ही, स्पर्श के साथ हमारे जन जन के संस्कार जुड़े हुए हैं। ये ना समझना केवल हमने ऐसा हाथ लगाया और केवल स्पर्श किया और अच्छा लगा, दुख हो रहा था, उस भाई के कंधे पर सिर रख दिया, अच्छा लगा थोड़ा, उस बहन ने हाथ पकड़ा या यहां हाथ रख दिया, आहा, ठंडक मिल गई, एकदम मां की याद आ गई, मां मां ही है और एक ही होती है, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई नहीं। ये बहुत अच्छा है, दोस्त है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स इन द लॉन्ग रन टर्न इन टू सेक्शुअल फ्रेंडशिप्स मोर ऑफन देन नॉट। इसलिए स्पर्श नहीं, वहां रखो। हमारे पास जैन साध्वी आती है ओपीडी में, बैठती नहीं है, ये अगर पुरुष बैठा है वहां खड़ी रहेगी, बैठती नहीं है, 48 मिनट्स का टाइम गैप होना चाहिए फिर बैठती है। अव्यक्त बाप दादा आते हैं, सबने देखा है, कितनी कम मूवमेंट से, कितना कम स्पर्श है, थोड़ा सा दादी को हाथ लगाते हैं बस, मूवमेंट्स कितनी कम है। तीसरा प्रशंसा करना, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन अच्छी है, ये है, वो है, बाबा ये बहन बहुत अच्छी मुरली सुनाती है, बाबा इसकी मुरली बहुत अच्छी है, इसकी आवाज़ बहुत मीठी है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है। बाप कहते हैं बच्चे मीठी बहन नहीं, मीठी मुरली है। किसमें कितनी भी विशेषता रहने दो, किसने भरी उसमें विशेषता, उसने भरी है। कोई कितना भी अच्छा सुनाता हो, कितनी भी अच्छी आवाज हो किसी की, किसने भरी है उसमें वो विशेषता, भगवान ने। वो केवल निमित्त मात्र है, टंकी ऊपर है, उस टंकी का पानी इस नल से आ रहा है, महिमा नल की नहीं टंकी की है। कई बार सुना है, मोहम्मद रफी ने कभी कहा है, उस खुदा ने यह आवाज इस हलक में दी है, मेरी कोई महानता नहीं है, महिमा नहीं है, उसकी है। वो चाहता तो यह आवाज किसी और को भी दे सकता था, वो चाहता तो ये सेवा किसी और को भी दे सकता था, और वो चाहता तो अभी भी वो सेवा छीन सकता है। जिसने सब कुछ दिया क्या उसने सब कुछ छीनने का अधिकार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है? सब कुछ हटा लेगा फिर क्या करोगे? गिर पड़ोगे। इसलिए दूसरों की विशेषताओं को सराहना करना परंतु प्रभावित नहीं होना है। तीसरा, चौथा, खेलना, साथ साथ खेलना, नॉट अलाउड, कुछ भी हो। वर्तमान समय जो स्कूल है, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ दोस्ती होती है। आइडियली पुरुषों का अलग, स्त्री का अलग। कई सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जो ध्यान सिखाती है, उसमें स्त्रियां अलग पुरुष अलग, भोजन कक्ष स्त्रियों का भोजन अलग पुरुषों का भोजन अलग, स्त्रियों का एकोमोडेशन पुरुषों का एकोमोडेशन के बीच में अगर एक साथ शिविर चल रहा है तो पुरुषों को स्त्रियां दिखती ही नहीं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन ना स्त्रियों को पुरुष दिखते हैं, ऐसा पार्टीशन है कंस्ट्रक्शन में ही। पुरुष बैठे हैं, अचानक कोई स्त्री वहां प्रवेश करती है, पुरुष की चेतना में रूपांतरण होता है। स्त्रियां बैठी है, कोई प्रवचन कर रही है सभा में, सभी स्त्री, अचानक एक पुरुष आके बैठता है, स्त्री की चेतना में परिवर्तन आता है। माना कि सब आत्मा है परंतु वो संपूर्ण स्वरूप अभी हम उसमें स्थित नहीं है, और जन्म जन्म के शरीर के संस्कार है। भक्त है, प्रभु नाम में गुणगान में इतना डूब गए, हरे कृष्णा ऐसी सभा में एक स्त्री की प्रवेशता जो कि अत्यंत भक्त है, भक्तिन है वो खुद भी, उसको भी देखने से चेतना में रूपांतरण आता है। इतनी गहरी बातें हैं, इसलिए इतने कड़े नियम हैं। और यज्ञ के शुरुआत में ऐसे बहुत से नियम थे जो कालांतर में डाइल्यूट होते गए। मधुबन के आंगन में एक बहन जा रही है, मधुबन में एक भाई अभी भी है, वो खुद ही सुनाते हैं। वो बहन से पूछते हैं, बहन जी आप कहाँ से हो? कोई सेंटर की बहन है, भाई मधुबन से, दीदी मनमोहिनी पीछी है। दीदी पूछती है, शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है? माइंड योर ओन बिजनेस। ये कहाँ से है, वो कहाँ से है, ये कहाँ करती है, वो क्या करती है, यहाँ क्यों रुकी है, वहाँ क्यों रुकी है, यहाँ थी वहाँ क्यों चली गई, तुमको क्या करना है? नो पर्सनल इंटरेस्ट इन पर्सनल अफेयर्स। प्रभावित करने का स्वभाव, अपनी वाक्पटुता से प्रभावित करते, अपने नृत्य से, अपने गायन से, अपनी कला से, अपने योग से, अपने ब्रह्मचर्य से भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते और प्रभावित होते भी है दूसरे। इसलिए प्रशंसा, साथ में खेलना, उस समय तो वो खेल और एक दूसरा भी खेल है, मोबाइल से एक मैसेज इधर एक मैसेज उधर, एक व्हाट्सएप इधर एक व्हाट्सएप इधर, व्हाट्सएप से खेलते रहते हैं और फिर हिस्ट्री डिलीट करते हैं। हिस्ट्री डिलीट करने की चिंता ज्यादा है, हिस्ट्री क्रिएट करने की चिंता करो, इतिहास रचना है। मोबाइल किसी और के हाथ में चला गया तो धड़कने बढ़ जाती है। डिलीट डिलीट डिलीट, खेल। पांचवा गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, एकांत में कोई इस कोने में अंधेरे में, कोई उस कोने में अंधेरे में, क्या बातें कर रहे पता नहीं, पास में जाके खड़े रहो तो किससे बात कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। शब्दों का काम ही नहीं। प्राइवेट टॉक्स, गुह्य भाष्य, 3 मिनट से ज्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, बस। हाँ, अगर कुछ सेवा समाचार है, सेवा संबंधित बात है तो ठीक है, बस। और वो सुनाओ, ठंडी कैसी है उधर, और सुनाओ आज भालू मिला कि नहीं, और सुनाओ आज क्लास में कितने लोग आए थे, तो आज टोली में क्या बनाया वैसे, आज भोग का क्या है, अरे वो फोटो भेजे नहीं तुमने शिवरात्रि वाले। सेवा छटाक भर की, फोटो इतने, और पकड़ पकड़ के फॉरवर्ड, तुमको देखना है ये हमने सेवा की है, छोड़ेंगे नहीं तुमको, देखो अब भेजे है ना, भेजो, और उसके बाद ये भी भेजो कैसे लगा। प्राइवेट टॉक्स, एनक्रिप्टन, एनक्रिप्टेड टॉक्स। अगला संकल्प, समीप जाने का संकल्प, प्राइवेट में मिलने का संकल्प, अकेले में मिलने का संकल्प। अगला अध्यावसाय, वास्तव में जाके मिलना। और आठवां क्रिया, the act। ये 8 बातों में से एक भी बात का किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में खंडन हो रहा है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। पहला देखना, दूसरा स्पर्श करना, तीसरा प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, चौथा साथ में खेलना, गुह्य भाष्य करना, अध्या संकल्प करना, साथ में मिलेंगे, तुम कहाँ हो, इधर आ जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, साथ में बैठ के योग करेंगे, पवित्र योग, तुम यहाँ मैं यहाँ, साथ में बैठ के बाबा को याद करेंगे तो योग अच्छा लगता है। दादी जान की खुद सुनाती है, सबको पता भी होगा, किसी भाई का कोर्स कराया, दादी पहुंची बाबा के पास, बाबा वो भाई बहुत ही अच्छा है, वो एकदम कल्प पहले वाली आत्मा लग रही है, एकदम उसको तो तीर ही लग गया है बाबा। बाबा चुपचाप सुन रहे हैं और कहते, तीर उसको लगा या तुमको, वास्तविक काम कटारी, ये 8वां पॉइंट है, और उसके पहले ये 6 बातें, 7 बातें हैं जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। तो 3रा सूत्र है कंट्रोल। पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा, त्याहुना आंधळाच बरामी। अंधा ही ठीक हूं, अपवित्र वचन नको माझ्या मुखे, त्याहुन मुकाच बरामी। मम हृदय कंज निवास कर, कामादि खलधल भंजनम। इफ देयर इज लस्ट इन योर आईज, यू हैव ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री। जीसस क्राइस्ट कहता है, अगर तुम्हारी आंखों में काम वासना है, कामिक कामुक दृष्टि है, कामुक भावना है, तो व्याभिचार तो पहले ही हो चुका है। किसी धर्म पुरुष ने कहा, यदि किसी देश को नष्ट करना है तो स्प्रेड वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी, नग्नता और अश्लीलता उस देश के युवकों में फैला दो, वो देश नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसकी संस्कृति पर आक्रमण कर दो सीधा, सब नष्ट होगा। ये तीसरा सूत्र। चौथा आहार, गरिष्ठ आहार, भारी आहार, तला हुआ, पका हुआ, नमकीन, बहुत मीठा, बहुत रसीला। वो सन्यासी जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, फिर भी अप्सराएं पीछा नहीं छोड़ती थी स्वप्न में। यहाँ तीन बार भोजन और चार बार टोली, और हम महा राजयोगी हूँ, ब्रह्मचारी, परम पवित्र। फूड इज लिंक्ड विथ कॉन्शियसनेस। योगी का भोजन धीरे धीरे हल्का 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 होते जाता है, सूक्ष्म, कम, अल्प। वो भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न करे, पहला, वो भोजन जो आलस, प्रमाद और निद्रा ना लाए, और वो भोजन जो स्वास्थ्यवर्धक हो, ये योगी का भोजन है। वो कैसा, इस पर बहुत सारी दूसरी भट्टियां हैं। ऊपर अभी एक भट्टी चल रही है ऑलरेडी, प्राणिक, 108 दिन की। तो आहार बहुत आवश्यक है। हम क्या खा रहे हैं, वही जाकर उत्तेजनाएं उत्पन्न करता है पूरे शरीर में। और उत्तेजनाएं ऐसी होती है कि व्यक्ति परवश हो जाता है, गुलाम बन जाता है उन उत्तेजनाओं का। फिर ज्ञान योग सब फेल। काम मंद नदी की तरह नहीं, उफान तूफान और सुनामी बनकर आता है। जितने ज्ञान योग के घर बसाए थे सब उड़ाकर खत्म एक क्षण में। आवेग है वो, क्षण भर का आवेग और जीवन भर का पश्चाताप। एक योगी है, उसे सिद्धि प्राप्त है उड़ने की, बचता है लोगों से, किसी ने देख लिया और वो फैला दिया सब कि इसको सिद्धि है। योगियों को सिद्धियां पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। वो सच्चा योगी है, दूर जंगल में चला जाता है, पहाड़ों पर, किसी से दूर रहे, परंतु राजा तक बात चली जाती है। राजा उस तक पहुंचता है, कहता है मुझे एक बार दिखाओ कैसे उड़ते हो। कहते ये सब मैं नहीं कर सकता। राजा कहते हैं मेरे पास चलो, मैं तुम्हें ऐसा ही रहने का स्थान दूंगा अपने राजमहल में, ऐसे ही जंगल, ऐसी कुटिया, कोई तुमसे नहीं मिलेगा। बहुत उन्होंने विनय करने के बाद वो वहां आ जाता है और अपनी साधना चालू रखता है। राजा फिर आता है, कहता है एक बार मुझे देखना है व्यक्ति उड़ता कैसे है, और तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त है लेविटेशन की, वो दिखा देता है। कुछ दिनों के बाद राजा फिर आता है, कहता है मुझे एक बार फिर देखना है। और उस बीच राजा की जो कन्या होती है, राजकुमारी, वो उस योगी को भोजन देती है, फल वगैरह जो भी है, परंतु वो अपने ध्यान अवस्था में ही रहता है हमेशा। पर उसे पता, आभास तो होता ही है स्त्री की उपस्थिति का, कि कोई कन्या आती है, फल रखती है, जाती है रोज, वो देखता नहीं है कभी। और राजा एक दिन आता है, कहता है मुझे फिर दिखाओ कैसे उड़ते हो, मुझे देखना है कैसे उड़ते हो, फिर से दिखाओ। साधना अच्छी चल रही थी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी, और वो उड़ के दिखाता है और उड़ता है। और जब नीचे आ रहा होता है तो उस कन्या को देख लेता है जो फल रख रही है, और जैसे ही कन्या को देखता है सीधा क्रैश लैंडिंग, सिद्धियां खत्म एक क्षण। ओनली वन मोमेंट इज इनफ टू डिस्ट्रॉय। आहार पर काम करना है। अगला एक्सरसाइज, जो कुमार है, हार्ड वर्क, एक्सरसाइज, जिम, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, सब करो, ताकि शरीर में फुर्ती रहे, ऊर्जा रहे, शक्ति रहे, और बाकियों के लिए भी। अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है तो काम वासना तीव्र होती है, ये भी बीमारी भी, बीमारी में व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बेड पर पड़े पड़े फैंटेसीज में चला जाता है, पुरानी विकार वापस जागृत हो जाते हैं। इसलिए बीमारी नहीं पड़ना है कभी, कभी कोई दवाई लेने की जरूरत ही ना पड़े। डेली एक्सरसाइज, उसके लिए टाइम निकालो, इस भट्टी में इसकी भी प्लानिंग करके जाओ, वहाँ जाने के बाद एक्सरसाइज कब करनी है, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जॉग करो, कुछ भी करो, पर करो, योगासन करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, और ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक है, हार्ड वर्क, स्पेशली कुमार, दे शुड बी हार्ड वर्किंग, डेली एक्सरसाइज। उसके बाद में अगला है फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी अर्थात दोस्ती, फैमिलियरिटी अर्थात घनिष्ठता, फैमिलियरिटी अर्थात संपर्क को बढ़ाना, अपने सभी संबंधों को संपर्क बना दो, क्या कर दो, ये एक युक्ति है, संबंध नहीं रखना है किसी से, क्या रखना है, संपर्क, जिनसे संबंध है उनको संपर्क में कन्वर्ट कर दो, ज्यादा डीप रिलेशंस दुख को लाते हैं, जितना डीप रिलेशन होगा उतना द्वंद होगा, क्योंकि इमोशंस, मूड ऑफ, कभी इसका मूड ऑफ, कभी उसका मूड ऑफ, कभी वो उसको मनाएगा, वो उसको मनाएगा, ये मनाने में ही जीवन चला जा रहा है। टेक अ डिसीजन, बैठो और डिसीजन लो कि हमारे मार्ग अलग अलग है, तुम उस मार्ग से जाओ, उस मार्ग से हम, टाटा बाय बाय, फाइनल, उसको ही निभाते निभाते नहीं रहो, फाइनल एक डिसीजन ले लेना है, और ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और जितना जल्दी लो उतना अच्छा। जो संबंध टूट रहा है, बिखर रहा है, और सारी आशाएं अभी नहीं है, उसको हटा दो, टेक अ डिसीजन क्विक फास्ट, प्रोलॉन्ग मत करते जाओ उस डिसीजन को, क्योंकि अभी ये तपस्वी जीवन है, तपस्वियों की दोस्ती केवल तपस्वियों के साथ ही हो सकती है, भोगी और विलासियों के साथ नहीं, तीव्र पुरुषार्थियों की दोस्ती केवल तीव्र पुरुषार्थियों के साथ हो सकती है, वो नहीं जो अमृत वेला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुरली आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे, नॉट पॉसिबल। तीव्र पुरुषार्थी मार्ग पर जाते ही हमारे गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स बदल जाएंगे, वही नहीं रह सकते जो पहले थे। इसलिए डीप रिलेशनशिप किसी के साथ भी नहीं रखने, अगर है तो म्यूचुअल कंसेंट लेके 6 months का एक गैप दे दो, लंबा, नो कॉन्टैक्ट, नो रिलेशन, नो मैसेज, नो SMS, नो व्हाट्सएप, नो मेल, नथिंग, कुछ भी नहीं। टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, क्योंकि जब जब बातें करते तब तक नए बंधन क्रिएट होते हैं। एवरी फोन कॉल क्रिएट्स न्यू बॉन्डेज, एवरी मैसेज क्रिएट्स न्यू बॉन्डेज। कुछ भी ना करो, नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, वो सोचता है हम दोषी है, ठीक है हम दोषी है, गैप, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, एक गैप दे दो 6 months का, फिर वही संबंधों के नए पहलू दिखाई देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए फैमिलियरिटी पतन की जड़ है, मुरलियों में कई बार आता है फैमिलियरिटी फैमिलियरिटी, और वो केवल भाई बहनों की नहीं, भाई बहनों बहनों की, भाई भाइयों की भी नहीं हो, दोस्त ज्यादा, दोस्त घनिष्ठता हो गई, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घृणा उत्पन्न होती है। पहले जिनके प्रति बहुत सम्मान था, आपकी बहुत अच्छी हमने क्लास सुनी, ये सुना वो सुना, और जब दोस्ती कर देते तो पता चलता है इनमें भी वही अवगुण है, फिर घृणा उत्पन्न होती है उसी व्यक्ति से, इसलिए दूर ही रहना अच्छा है सबसे, दैट इज बेस्ट, नहीं तो मोह कितना हो जाता है। मधुबन में हमने देखा था, 2 बहनें बैठी थी, वो उसको चम्मच से खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी, प्रेम, प्रेम बहुत अच्छी चीज है, परंतु मोह है। अपने मोह को सार्वजनिक बना दो, एक व्यक्ति में मोह है, सब में मोह क्रिएट करो, सबसे वैसा ही प्यार, नहीं तो इट इज अ ट्रैप। अगला गैजेट्स, मोबाइल, इंटरनेट, ये जितने गैजेट्स है इनका प्रयोग, इसको भी थोड़ा अमृत वेला सकाश दिया करना, बड़े विकर्म कराता है, इसको बैठ के थोड़ी प्यूरिटी की किरणें और सकाश दो इसको, सब तरफ से देना, बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 2 घंटा पहले सोने से इंटरनेट ऑफ, हो सके तो मोबाइल ही ऑफ। डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। ऑनलाइन तब तक प्रवेश नहीं करना है जब तक कोई लक्ष्य ना हो। मुरली में ये पॉइंट है, ये उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ढूंढना है, जाओ और वापस निकल के आओ, नहीं तो वो चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु, जाना तो पता है पर आना पता नहीं है। चालू किया था 10 बजे और हो गए 2 बज गए रात के। क्लिक 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 क्लिक, एक क्लिक ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, क्लिक। गैजेट्स, इनका प्रयोग केवल ज्ञान योग धारणा और सेवा के लिए है बस, और कुछ भी नहीं। और बहुत अच्छी हो सकती है सेवा, पर पतन भी उतना ही तेजी से हो सकता है। इसके लिए अननेसेसरी एप्स आउट, अननेसेसरी सोशल मीडिया आउट, अननेसेसरी डिजिटल परचेसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग स्टॉप, ऑनलाइन न्यूज स्टॉप, अननेसेसरी एप्स स्टॉप, सोशल प्लेटफॉर्म स्टॉप। किसी की आवश्यकता नहीं है, जितना आवश्यक है बस उतना ही रखो उसमें, दैट्स इट। कम से कम मिनिमलिस्टिक अप्रोच, द मोर द लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है, द लेस इज मोर। नहीं तो ये पतन का जड़ है, सभी गिरा देता है कहां से कहां। जितने विकर्म यूट्यूब के बाद चालू हुए 2008 के बाद, उतने पहले नहीं थे संसार में। ब्लैक होल है, सक कर लेता है। अनइंस्टॉल, डिसेबल कर दो कई सारे ऐप, जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत पड़ी गूगल में जाओ और वहां से घुसो, फिर जो कुछ देखना है और वापस आ जाओ, दैट्स इट। लास्ट पॉइंट, 8वां सूत्र, होली कंपनी अर्थात सत्संग। ऐसे दोस्त हो जो ब्रह्मचारी हो, जिन्हें प्यूरिटी से प्यार हो, जो प्यूरिटी के मार्ग पर अग्रसर है, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी है जो हमें गिराए। इसलिए सत्संग, इसलिए सेंटर पर जाकर मुरली सुननी है, उस पवित्र वातावरण में। क्या सुनने वाले हैं वो तो हमें पहले ही पता है, बहुत सी बातें बाहर सुनते हैं, जाते ही नहीं। वहां जाओ, वहां बैठो, वहां के पवित्र प्रकंपनों में नई ऊर्जा आएगी। सेंटरों के दीवारों में ऊर्जा है, मधुबन में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा वहां है। जो बहन वहां बैठी है, कौन है वो? कोई साधारण नहीं है, अपना सर्वस्व जीवन उसने समर्पित किया है इस यज्ञ के लिए। एक ब्रह्मा कुमारी और संसार की हजारों नारियां एक तरफ, कोई कंपैरिजन नहीं है। यज्ञ की वेदी पर उसने अपना यौवन अर्पित किया है। शिव की शिवा है वो। भक्त मंदिरों में जिसे पुकार रहे हैं वो है, वो शिव की अर्धांगिनी है, शिव की शक्ति है। तो ऐसी 8 बातें हैं। पहली, ऑटो सजेशंस अर्थात आत्म सुझाव देते रहना। दूसरा, स्वयं को बिजी कर देना, इतना बिजी कि टाइम ही नहीं है व्यर्थ के लिए। फुर्सत सभी विकारों की जड़ है। तीसरा कंट्रोल, संयम, उसमें 8 बातें बताई। फिर डाइट, अपने डाइट पर काम करना है। जैसे ही डाइट चेंज होगा चेतना में रूपांतरण होगा, जो उत्तेजनाएं शरीर में है वो अचानक समाप्त हो जाएगी, सब चली जाएगी। और जितना हल्का होगा शरीर में डिटैचमेंट अपने आप आएगा, जितना हो सके सॉलिड से लिक्विड की तरफ यात्रा चालू करो। सॉलिड चबाना, रिपिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग, ये 3, फाड़ना, काटना और चबाना, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। इससे धीरे धीरे लिक्विड्स की तरफ आ जाओ, लिक्विड फ्लो एस्टैब्लिश हो, वी आर लिक्विड बीइंग्स। अपने आप ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। सब कुछ कर लिया फिर भी ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है, एक चीज करना बाकी है और वो है भोजन परिवर्तन। अपने आप होगा, अपने आप शरीर की सारी उत्तेजनाएं समाप्त, शरीर से हम ऊपर देख सकेंगे। अगला एक्सरसाइज, अगला फैमिलियरिटी। अमृत वेला एक दृश्य क्रिएट करो, जिस व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा मोह है, आकर्षण है, सोचो वो मेरे सामने खड़ा है, ये मैं और वो, सिल्वर कॉर्ड्स से हम जुड़े हुए, फिर कैंची निकालो, कट करते जाओ। अब तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं। एक व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं होती होती, डॉक्टर कहता है तुम ये सोचो कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, और वो ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी देखती है पति का उसके प्रति व्यवहार बदल गया है, जितना उसको इंटरेस्ट पहले से आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा, यह आखिर हो क्या रहा है? डॉक्टर ने तो बीमारी के लिए कहा था कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, रिपीट करते रहो अफर्मेशंस। उसकी पत्नी कहती है कुछ तो ज़रूर है, और ये बाथरूम में इतना देर क्या करते रहता है? एक बार सुनती है वो बाथरूम में क्या बोल रहा है, तो बाथरूम में बैठ के वो बोलते रहता है ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। प्रैक्टिस अफर्मेशंस, रिपीट, अंदर से चालू था बाहर से दिखाई पड़ने लगा, इंटरेस्ट ही नहीं है उसको देखने में अब। तो द पावर ऑफ अफर्मेशन, द पावर ऑफ रिपीटिशन। अगला बताया ई गैजेट्स, ये जो गैजेट्स है सारे, इन पर काम करना है थोड़ा सा। डिजिटल डिटॉक्स, 3 दिन के लिए हाथ ही नहीं लगाओ मोबाइल को, दुनिया में क्या हो रहा है होने दो, मर जाने दो, बता दो उनको कि हम यहां पर हैं, डोंट कॉल। जिनको भी फोन करना है इस क्लास के बाद कर देना, 7:30 बजे फोन, ठीक है? सभी स्थिर, अलर्ट। लास्ट पॉइंट था सत्संग, डायरी, पेन, मोबाइल सब बंद। योग में शक्तिशाली पवित्रता की स्थिति का अनुभव करेंगे, अंग से अंग ना लगे। सृष्टि के अनंत सागर में चेतना की वह शक्तिशाली बूंद मैं हूं। शरीर संपूर्ण स्थिर, देह की सारी हलचल समाप्त, मन शांत, एकाग्र। बुद्धि स्थिर, कुछ समय के लिए आंखें बंद, स्वयं के ही शरीर का निरीक्षण करेंगे, सिर के सिरे से पांव तक, चेहरा जो तनाव है रिलैक्स, दाया हाथ शिथिल, बाया हाथ, छाती, पेट, मन को घुमाएंगे शरीर में, पीठ कमर। दाया पैर बाया पैर, ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण शरीर में मन को घुमाएंगे फिर से। अंग प्रत्यंगों को देखेंगे, जहां जहां तनाव की अनुभूति है उस अंग को ढीला छोड़ देंगे। संपूर्ण सजगता, स्थूल देह में विराजमान मैं एक दिव्य ज्योति हूं। देह के भव्य भाल पर विराजमान चमकता हीरा, मुझात्मा से संपूर्ण शरीर में प्रकाश फैल रहा है, दिव्य प्रकाश अनुभव। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बहने बहनों की तरफ, भाई भाइयों की तरफ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे इस तरह, हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए, एक हाथ से इधर के हाथ, इधर के भाई का, एक हाथ से इधर, आंखें बंद, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे भाइयों की तरफ, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे हाथों से, दोनों हाथों से पवित्रता की ऊर्जा इन दो आत्माओं को जा रही है। मैं अनंत शक्ति का सागर हूं, बाल ब्रह्मचारिणी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, शिव की अर्धांगिनी हूं, शक्ति हूं। सभी इसी अवस्था में रहेंगे, आंखें बंद, मन स्थिर, अंग अंग में पवित्रता का अनुभव। मेरा प्रत्येक सेल, एक एक अंग, एक एक कोशिका प्यूरिटी की ऊर्जा से भर रही है, सिर से लेके पांव तक पवित्रता ही पवित्रता, पवित्रता की एक करंट मेरे हाथों से जा रही है। आंखें बंद ही रहेंगी और इन दो आत्माओं से पवित्रता की ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। पवित्रता का सागर, पवित्रता का एक वर्तुल उत्पन्न हो रहा है, चारों तरफ प्यूरिटी ही प्यूरिटी, और परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही है। अंग प्रत्यंग निर्मल हो रहा है, एक एक भाव, एक एक विचार, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ पावन हो रही है, नवजन्म हो रहा है अनुभव। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अखंड ब्रह्मचारी हूं, अखंड ब्रह्मचारिणी हूं। मेरे ही पवित्रता से संसार प्रकाशित है, चारों तरफ मुझसे पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। मैं ऊर्जा हूं, शक्ति हूं। आंखें खोलेंगे और सामने शिव बाबा से पवित्रता की किरणें स्वयं में धारण करेंगे और एक प्रतिज्ञा समस्त ब्राह्मण परिवार के आगे, आज मैं आत्मा स्वयं से, बाबा तुम से और इस ब्राह्मण परिवार से और इस यज्ञ से प्रतिज्ञा करती हूं, करता हूं कि आज के बाद मेरा जीवन संपूर्ण पावन होगा, अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित होगा। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान पर मेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। और देखो, भगवान स्वयं अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख रहा है। विजयी भावा, विजयी भावा। संगठन की संगठित ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है, संकल्प बीज है उसमें बल भर रहा है। बाबा मैं स्वयं को तुम्हारे आगे समर्पित करती हूं, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे, एक तू ही। और इस प्रतिज्ञा के साथ अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओम शांति।
मुख्य फाउंडेशन पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति को जीवन में धारण करने की बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल टिप्स आपसे हमें प्राप्त हुआ है, और जिसे हमें सारा जीवन बहुत अच्छी तरह से धारण कर लेना है। यही सबके दिल में दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिन भाई जी का।